लॉन्गेस्ट टाइम जो रशिया था वो असाद, जो बशार अल असाद की गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसको ये लोग सपोर्ट कर रहे थे सीरिया के अंदर, और जो एंटी बशार अल असद थे उनको सपोर्ट टर्की कर रहा था, और ये काफी उसके अंदर मरामारी चल रही थी, हजारों बेचारे सिविलियंस उसमें मर गए थे, 1 मिलियन के करीब जो है वर्ल्ड एस्टिमेट्स हैं कि 1 मिलियन के करीब लोग जो है सीरिया से डिस्प्लेस हो गए थे। आज इन्होंने हाथ मिला लिए और आज इन्होंने कहा कि हमको अपने डिफरेंसेस खत्म करने की जरूरत है और हमको जो है मिलकर ये जो है, एक मौका एक ऐसे आया था कि जिस वक्त वो इदलिब के अंदर वो आगे थे सारे ये जो थे रेबल्स आगे थे, तो इन दोनों ने फिर मिलकर जो है उनको पीछे पुश किया था, बस ये एक मौका था। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे इसको इसके दो व्यूज आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है वो कह रहे हैं जी कि चूंकि अर्दोगान साहब को स्नब मिला है यूएसए की तरफ से तो इसलिए अब वो जी नई अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग थोड़े जरा सेनर और सोबर माइंड के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, ये जो इन दोनों लीडरों ने किया है दिस शोज हाइट ऑफ लीडरशिप, दिस शोज के दुनिया के अंदर अगर कोई आप पीस लाना चाहते हैं ना तो आपकी कुत्ते के जैसी भी लड़ाई आपस में होए आप बैठ के मामलात को जो है हल कर सकते हैं, तो इन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है दोनों लीडर्स ने।
मगर आप देखे ना कि मैं मिडल में हूं इसमें कि यहां पर दुनिया में अब दो अलायंसेस बन गए जो कोल्ड वॉर के वक्त था,
जी जी जी
उसी तरफ हम जा रहे हैं
बिल्कुल,
क्योंकि अब जो है ये
वही बनता जा रहा है।
आर्म्स डील थी एक टर्की एंड यूएस की, और यूएस ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे रहे हैं,
वही उसी की स्नब की बात कर रहे हैं।
तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप नहीं देंगे तो सही है हम रशिया के पास चले आते हैं, रशिया से उन्होंने डील कर ली। अब वो जो है उसके अंदर फिर रशिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, टर्की है, ये ममालिक जो है और जितने भी तान है वहां
सेंट्रल एशियन स्टेट्स
वो है वो सब वो मिलके एक वो
बना रहे हैं
ब्लॉक, और उसके अंदर फिर अभी अफ्रीकन्स भी ज्वाइन करेंगे, उसके अंदर यूरोप के भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, ये भी करेंगे, मगर ये जो है ये दूसरा अलायंस जो है वो जैसे आपने कहा कि जापान एंड अमेरिका एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये लोग मिलकर बना रहे हैं, तो ये एक दो वाजे तौर पर
क्लियर ब्लॉक्स आ रहे हैं,
एग्जैक्टली दो बड़ी बड़ी ताकतें सामने आ रही है।
तो बहरहाल जी आज इसकी तारीफ की गई है बड़ी, उन्होंने कहा कि बड़ी मैच्योर इन्होंने लीडरशिप दिखाई है दोनों ने, और इन्होंने अब से कहा जो अभी तक तो कोई ज्यादा जो है चीजें सामने नहीं आई है, वैसे भी आपको पता है कि रशिया से चीजें कम ही आती है, ये सोची के अंदर रशिया के अंदर ये मीटिंग हुई थी तो रशिया से कम ही वो आती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी यहां पे अब हम बैठ के टॉक्स करेंगे, और सिर्फ इतनी बात सामने आई है कि जो हमारी टॉक्स थी वो बड़ी पॉजिटिव थी और इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे, तो अब रिजल्ट क्या आएंगे उसके अब फर्दर क्या डिटेल्स हैं वो अब आने वाले दिनों में आएंगी तो हम करेंगे। आज एक और बहुत ही रेयर मीटिंग हुई है, बहुत ही रेयर मीटिंग है जबकि सारी दुनिया के अंदर तालिबान के खिलाफ बात की जा रही है, खासतौर पे यूएसए और इंडिया जो है काफी इस चीज को ड्राइव कर रहे हैं एजेंडा को कि तालिबान के साथ ना तो बात की जाए ना उनके साथ बैठा जाए ना ये बड़े टेररिस्ट हैं ये हैं वो हैं। टर्की के जो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने आज जो तालिबान के एक्टिंग डेप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ आज मुलाकात की है। अच्छा जी इनकी जो है ये हैं इनका नाम है जिहाद अरगिने जो टर्की के एम्बेसडर हैं और इनकी मुलाकात हुई है अब्दुल सलाम हनफी के साथ और इस पे उन्होंने फिर से कहा है आपको पता है कि पहले भी टर्की कह रहा था कि हमको सारी जो वर्ल्ड पावर्स थी उनको कि हमको एटलीस्ट जो काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको ऑपरेट करने दें ताकि वहां पे फ्लाइट्स आ सकें और जा सकें हमारी फोर्सेस वहां पे रहने दें। खैर वो इन्होंने बात नहीं मानी ना तो तालिबान ने ना तो दुनिया ने, बहरहाल इनकी आपस में मुलाकातें हुई हैं और इससे पहले जो हैं इन्होंने ये जो हैं अरगिने साहब जो हैं इन्होंने एक्टिंग जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं नूरुद्दीन अजीजी उनके साथ भी मुलाकातें की हैं और उनको कहा है कि टर्की हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको कोई जो भी हेल्प चाहिए हम आपकी हेल्प जो है वो करने के लिए तैयार हैं और हम आपके लिए आपके साथ काम करेंगे फॉर यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी एंड पीस इन द रीजन एंड ऑल दैट। अब इसको फिर से कैसे देखा जाएगा ये फिर से यानी कि टर्की के ऊपर भी तलवार लटकाई जा सकती है जैसे पाकिस्तान के ऊपर लटकाई हुई है, बहरहाल ये आज इनकी जो है मुलाकातें यानी कि इसमें ये शो किया जा रहा है कि बेसिकली शायद टर्की ने तालिबान की जो न्यू गवर्नमेंट है उसको मान लिया वरना उनके एम्बेसडर का इन लोगों से मिलना कुछ माने नहीं रखता फिर
सही
अदरवाइज ऐसे है। अच्छा जी यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज कहा है कि ये हमारे जो मुल्क में हमने ये जो खबर सुनाई थी लास्ट वीक कि पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, अगर किसी के 1000 पेट्रोल पंप हैं तो 500 बंद हैं, 1200 हैं तो 600 बंद पड़े हुए हैं, इसलिए कि सारे जो ट्रक के ड्राइवर्स थे वो जो ऑयल लेकर आते थे वो सब यूरोप चले गए हैं ब्रेक्सिट के बाद, ठीक है जी। तो बड़ी वहां पे क्राइसिस चल रही थी। तो आज यूके की गवर्नमेंट जो है यहां पे इनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि भई यहां पे अब सेक्रेटरी जो हैं क्वासी क्वार्टंग जो हैं उन्होंने आज कहा है कि जी अब हम मिलिट्री के ड्राइवर्स जो हैं उनको बुला रहे हैं, यानी हम मिलिट्री वाले जो हैं उनके ट्रक्स। तो आज उन्होंने कहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगले कुछ आने वाले दिनों में आपको सड़कों के ऊपर मिलिट्री के ट्रक नजर आएंगे। तो आप ये ना समझें कि कोई मतलब है गवर्नमेंट को खतरा है या कि कोई वो कू होने वाला है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डीजल और पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास ट्रेन ड्राइवर्स हैं मिलिट्री के पास, तो उनके हम ट्रक और उनके जो हैं वो ड्राइवर्स और वो सारे यूज कर रहे हैं।
और इसके अलावा उन्होंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ये जो वो हैं ड्राइवर्स के लिए उन्होंने दुनिया भर में अपील की है, और जी जी ड्राइवर्स हैं वो जाएं वहां पर और उनको जो वीजा है उन्होंने क्रिसमस तक का वीजा दिया है।
यस, चलो चलिए फिर मायूस
भाई, चलिए जी
चलो कुछ पाउंड शाउंड कमा के आ जाइए।
अच्छी वैल्यू है पाउंड,
हाँ हाँ बड़ी अच्छी वैल्यू है मायूस, कैनेडियन डॉलर से तो ऊपर ही है ना।
ठीक हो गया,
ठीक है चलो फिर चलिए,
ठीक हो गया।
दिन मैंने लाई होती जैसे आपको पता है हमारे डॉक्टर्स जो है कैनेडियन, जो अच्छे बड़े डॉक्टर्स हैं, छह महीने यूएसए में गुजारते हैं और छह महीने कनाडा में गुजारते हैं ना, उनको उधर बड़े पैसे बन जाते हैं यूएसए में।
या एक साल सऊदी अरब चले जाओ काफी है।
हाँ नहीं, सऊदीया नहीं जाना मुझे, प्लीज सॉरी प्लीज, अगर आप माइंड करते हैं आप कर सकते हैं, बट मुझे आई वांट गो देयर। तो चलो माइज भाई इंग्लैंड चलिए, पहे बना लिए फिर आ जाइए, मॉर्गेज अपनी दे दी या आराम नाल बैठ के रोटी खाइए। चलो जी, अच्छा जी, तो आज जी तो ये उन्होंने खबरदार आज किया, उन्होंने कहा कि भाई आप घबराना जाएं कि मिलिट्री के ट्रक या मिलिट्री वाले,
घबराना नहीं है,
घबराना बिल्कुल नहीं,
हाँ,
घबराना नहीं है,
हाँ जी।
तो बस ये मिलिट्री की आपको जो है वो नजर आएंगे, तो उसमें बहरहाल हम ये शॉर्टेज क्योंकि खत्म करना चाहते हैं पेट्रोल की, जो लोगों को मुश्किल है उसके लिए। अच्छा जी, कल हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि कल बड़ा खींचा गया है यूएस सेनेट के अंदर, जो है वो जो फॉरन अफेयर्स कमेटी थी वो इनसे पूछ रही थी, ये जो तीन बड़े बिग विग्स थे अमरीका की अब जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं उनसे कि भाई वो जो ऑस्टिन साहब से और जनरल माइली से और जनरल मैकेंजी से कि भाई हाँ जी पायान की हो अफगानिस्तान के बीच दसों से ही है जी। तो उन्होंने कहा कि हमको खुद भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये है। अच्छा जनाब, आज क्या हुआ है, आज वहां पे एक पूरा असेसमेंट आ गया है, उस असेसमेंट का जो टाइटल है वो है अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक बिल सामने लेकर आ रहे हैं और इस बिल में अब जाहिर अपनी गलती तो माननी नहीं है ना कि वी हैव बीन डिफीटेड बाय अफगानिस्तान, ये तो मानना नहीं है ना। तो वो मलबा तो पहले दिन से हम कह रहे हैं ना माजिद भाई के मलबा इन्होंने पाकिस्तान पे डालना है, आपको याद है हम जून से कह रहे हैं, जब से अमेरिका ने अनाउंस किया कि हम निकल आएंगे मई में इधर उधर, हम उस दिन से कह रहे हैं कि इन्होंने मलबा पाकिस्तान पे गिराना है। तो अच्छा जी, ये जो बिल अब नया आया है इसमें जी बड़ी लंबी दास्तानें हैं जी, वो बड़ी लंबी दास्तानों के बाद कि हम असेस करेंगे कैसे वहां से आपने निकाला, कैसे विड्रॉल किया, क्यों केओस रहा, क्यों अब जो है तालिबान अब क्या कर रहा है, तालिबान ये तो वो, उसके बाद जी वो पूरी रामलीला की कहानी के बाद फिर जी पाकिस्तान आ गया बीच में जी कि अब हम असेस करेंगे कि पाकिस्तान इनको क्यों हेल्प करता रहा है तालिबान को। वो पायान कोई मतलब एक खुदा का कोई खौफ करो पायन, आपके लिए 20 साल हमने ये वॉर लड़ी है पायन, कोई खुदा का खौफ करो नहीं जी। पर अंकल सैम का आपको पता ही है कितने बेदीद लोग हैं ना, आंखें फेर ली हैं उन्होंने एकदम। तो जी ये पूरा जो बिल आया इसके अंदर जी उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि वी वॉन्ट टू असेस सपोर्ट बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर तालिबान बिटवीन 2001 एंड 2020, प्रोविजन ऑफ सैंक्चुरी स्पेस, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, इक्विपिंग, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। तो इन द लाइट ऑफ ऑल दिस हम पाकिस्तान को भी असेस करेंगे कि ये क्यों अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और भाई उसने स्यापे डाले हुए पाकिस्तान को, इसलिए वो जुड़ा हुआ है पायान और आपके कहने पे उन्होंने किए हैं। तो जनाब ये है, ठीक है जी। तो अब जनाब इसके ऊपर जो है अब बहस शुरू हो गई है, तो अब देखें कि ये अब किस तरफ जाएंगे, क्योंकि कुछ जो सेनेटर्स हैं वो तो बड़ी मीननेस दिखा रहे हैं।
चल निकली है, अब देखो कहां तक
पहुंचेगी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं जी जैसे अफगानिस्तान पे आप सैंक्शंस लगाने का सोच रहे हैं ना, वैसे ही पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लगाएं।
अच्छी बात।
अच्छा, अब पाकिस्तान पे वैसे तो لگتا نہیں ہے کہ سینکشنز لگیں گے، لیکن اگر لگائے تو پائن پھر نیکسٹ ٹائم اگر تھوڑے بندے مر رہے ہوں گے نا افغانستان دے وچ، پھر تو عمران خان صاحب کو کہنا ہے نہیں بھائی صاحب ساری ہم کوئی ہیلپ آپ کی نہیں کر رہے، مرن دیو ہوں، مرن دیو بندے ہوں افغانستان وچ بندے مرن دیو ہوں، نہیں جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کو نہیں پائن ہوں سانو گھبرا دیو، ویسے ہی امریکہ کو بھی کہیں گے نہیں پائن ہوں سانو تسی ہوں گھبراؤ، ہوں تسی گھبراؤ، اب آپ کے بندے ہم نہیں نکال رہے افغانستان،
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا،
ایسے کرنا چاہیے. اچھا جی بہرحال اب دیکھیں گے آگے جو ہے وہ وہی جو مجدوری والی بات، اب بات نکلی ہے تو کہاں تک جائے گی پتا چلے گا. یہ جو عرفہ بجی ابھی بات کر رہے تھے، یہ جو نیو یارک ٹائمز کا یہ جو پیج جس کے اوپر جس کو کہ پورا مورف کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس کچھ آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس جو تھے انڈیا کے، اس نے کہا جی کہ ایگزیکٹ وہی فونٹ ہم نے نیو یارک ٹائمز کا یوز کیا ہے. نہیں جناب، ایگزیکٹ نیو یارک ٹائمز کا فونٹ نہیں یوز کیا ہے، کیونکہ جب آپ نے مورف کیا تو وہ سارا یہ دیکھیں ماجد بھائی، یہ ہے سپٹمبر 26, 2021 کا نیو یارک ٹائمز کا پیج. دس از دا پیج، دس از دا اوریجنل پیج، ٹھیک ہے جی. یہ نیو یارک ٹائمز کا سپٹمبر 26, 2021 کا اوریجنل پیج ہے، اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے مورفڈ پیج. تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نیو یارک ٹائمز اوپر لکھا ہوا ہے یہ فونٹ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے، اور جس میں کہ یہ ساری سٹوری. اچھا حد تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے بارے میں پتا چلایا گیا کہ یہ جھوٹی خبر ہے کہ یہ جھوٹی خبر نہیں ہے، یہ ان کے جتنے بھی یہ جو بی جے پی کے یوتھ ونگ کے جو لوگ تھے، پیپل لائک روہت چاہل اینڈ آل دیٹ، انہوں نے جی ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، اور ری ٹویٹ پہ ہزاروں ہی ری ٹویٹ آ گیا. آپ کو پتا ہے اگر روہت چاہل کو آپ فالو کرتے ہیں 76,000 فالوورز ہیں اس کے، تو انہوں نے جب کرنا شروع کیا تو 76 لوگوں نے 1000 نے تو کیا ہی، اس کے علاوہ ری ٹویٹس ہونی شروع ہو گئیں. اور یہ جو تھا اس کے اندر پھر پوری کلیریفیکیشن جو ہے نیو یارک ٹائمز نے بھی دی. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ذرا دکھائیں عامر، پھر سے دکھائیں یہ والا فیک پیج جو ہے، یہ دیکھیں ذرا اس کے اوپر جو ہے 26 سپٹمبر، جیسے نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے نا، تو ادھر آپ دیکھیں 20 یہ سپٹمبر 26 کیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے سپٹمبر 26 اور وہ لکھتے ہیں 26 سپٹمبر، کیونکہ وہ امریکن وے سے کرتے ہیں، یہ انگلش وے ہے. سپٹمبر 26 جو ہے دس از دا انگلش وے آف رائٹنگ، 26 سپٹمبر جب آپ لکھتے ہیں دیٹس امریکن وے آف رائٹنگ. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈفرنٹ انہوں نے کیسے وہ سنڈے کا ایڈیشن جو ہے وہ نکالا ہوا ہے اور اس طرح سے کیا ہوا ہے. تو بالکل فونٹس ڈفرنٹ ہیں، اسٹائل ڈفرنٹ ہے، اور وہ ہے. تو اس کے اندر جو ہے اب کافی یہاں پہ جو ہے، اور یہ جو تصویر ہے خاص طور پہ جو مورف کر کے یہاں پہ لگائی گئی ہے، یہ زی نیوز کی ایک اسٹوری تھی اور یہ پبلش ہوئی تھی لاسٹ منتھ میں، اور اس کا ٹائٹل تھا پی ایم مودی ٹو چیئر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہائی لیول اوپن ڈبیٹ آن انہانسنگ میری ٹائم سیکیورٹی. تو یہ اس کی تصویر ہے زی ٹی وی کی، زی نیوز کی. تو یہ وہاں سے یہ تصویر اٹھا کے یہاں پہ لگائی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کے یہ جو ہیں کام کیے ہوئے ہیں اور کیسا ہوا ہے. بہرحال جی اس کے اوپر کافی آج جو ہیں وہ کیا گیا ہے اعتراض جو ہے سارے سوشل میڈیا کے اوپر، اور کافی مطلب کرکری ہوئی ہے انڈیا کی اس کے اوپر. مطلب جھوٹ جو ہوتا ہے اس کے تو کوئی سر پیر نہیں ہوتے نا. اچھا جناب، دلی کے جو چیف منسٹر ہیں اروند کیجریوال، وہ ہم نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ 2 دن کے دورے پہ وہ پنجاب جائیں گے، تو آج وہ چندی گڑھ میں تھے. تو چندی گڑھ میں جب ایئرپورٹ پہ جس وقت وہ جیسے ہی پہنچے تو وہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے جو پنجاب کی سیاست ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں جو نئے چیف منسٹر ہیں چرنجیت چنی، ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو تماشا چل رہا ہے تمہارا یہاں پہ، اس تماشا جو ہے اس کو کانگریس کو اس کو بند کریں، کیونکہ اس کے اندر پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو ہے بہت پنجاب کا خراب ہو گیا ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی ہے اسٹیٹ کے اندر، اور یہ جو ڈرٹی فائٹ فار پاور چل پڑی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں لوگوں کو پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کس کے پاس جائیں اور کس سے بات کریں اور اپنے پرابلمز جو ہیں کس کے پاس لے کے جائیں جو سالو کرے گا. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ ان کا مین مقصد تو یہی ہے کہ جو پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ آپ جو ہے عام آدمی پارٹی اس کی طرف جو ہیں اٹریکٹ کریں، اور نیکسٹ الیکشنز میں زیادہ سے زیادہ سیٹس جو ہیں جیتیں، کیونکہ وہ اس رفٹ کا جو ہے کانگریس کا کی رفٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اچھا جی، یہ بھی ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کل کیپٹن امریندر سنگھ جو ہیں وہ دلی دربار میں پہنچ گئے ہیں. تو ویسے تو انہوں نے کل کہا تھا میں اپنے پرائیویٹ کام پہ آیا ہوں، میں کسی پالیٹیشین سے نہیں ملوں گا، لیکن کیا بات ہے جناب، ہوم منسٹر امت شاہ سے آج ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہاں جی، تو جب یہ باہر آئے تو پوچھا گیا کیپٹن صاحب سے کہ کیپٹن صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کسی پالیٹیشین سے نہیں مل رہا، میں تو اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ آیا ہوں. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, मुझे अमित शाह साहब से इसलिए मिलना था क्योंकि मैं उनका जो ऑन गोइंग ये फार्मर्स का मसला है उसको मैं चाहता हूं हल हो जाए, और हमारा पंजाब का जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। और इन्होंने हैशटैग भी किया फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने, नो फार्मर्स नो फूड। तो वो कहते हैं जी कि हमने, तो इस पर उन्होंने पूछा कि आपने पंजाब के बारे में कोई बातें की, उन्होंने कहा कोई उस पर जवाब नहीं दिया, कुछ पता नहीं है कि पंजाब पे बात हुई कि ना हुई। तो अब पंजाब की कांग्रेस जो है उसका ये हाल है कि अब तीन धड़े बन गए हैं वहां पे। एक धड़ा जो है वो खड़ा हुआ है चरणजीत चन्नी के पीछे जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, एक खड़े हुए जी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे, तीसरे जो है सिद्धू साहब के पीछे खड़े हुए हैं। तो अब कांग्रेस का क्या फ्यूचर है माजिद भाई इन पंजाब? What is this going on, Majid bhai? I don't like.
बीच में लटक गए वो.
लटक गए. इसका फायदा किसको होगा?
मगर देखा politicians.
बीजेपी को.
शरद जी देखा politicians. लास्ट सेकंड में अपने माइंड बदल के फिर वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर.
हॉर्स ट्रेडिंग. यस, फिर से शुरू हो
जाएगी. नो प्रॉब्लम.
या कोई बात नहीं है. ओके, इसलिए आप आज तक पॉलिटिशियन नहीं बन सके माजिद भाई.
देख लें
माजिद भाई.
हमने जो
कमेटी में आपको नहीं लेते, किसी पार्टी में आपको नहीं लेते.
नहीं हम
सही नहीं है हम लोग.
हम जहाँ चले गए सब चले गए, जिसको पकड़ लिया सब पकड़ लिया.
हम पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं है.
नहीं
बिल्कुल हम गलत लोग हैं. तो ऐसे है जनाब, ये चक्कर है. अच्छा जी, सीएनएन ने आज बड़ा हाईलाइट किया है क्योंकि सीएनएन का आपको पता है इंडिया के अंदर न्यूज 18 जो है उनके साथ कोलैबोरेशन है. तो न्यूज 18 के ने एक खबर छापी जो कि सीएनएन ने फिर हाईलाइट की. तो उसके अंदर वो जो है उन्होंने फिर से एक बार से बताया, उन्होंने कहा कि एक औरत को एग्जैक्टली जैसे 2012 में वो जो निर्भया का केस आया था, जैसे उसको एक चलती हुई बस के अंदर कुछ लोगों ने रेप किया था, इसी तरह फिर से एक दफा हुआ है. 34 ईयर ओल्ड एक औरत को मिनी बस के अंदर फिर से रेप किया गया है, और उसी तरह आयरन की रॉड्स यूज की गई हैं, उसी तरह उसको मारा पीटा गया है. और जो है उसके बारे में जब पता चला तो मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं हेमंत नगराले, उनसे मीडिया ने पूछा कि भई ये तो फिर से वही उसी की याद आ गई 2012 के गैंग रेप की और मर्डर की. तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, हमने लेकिन इसके अंदर एक्यूज काफी सारे पकड़े हैं, और ये जो है उसको भी बच्ची तो खैर क्या, 34 ईयर की औरत जो थी उसको मारा पीटा आयरन रॉड से और रेप गैंग रेप किया. तो उसको हॉस्पिटल जब लेके गए तो अब आज अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई लड़की की. तो उसके ऊपर तो ये जो है फिर से इन्होंने सीएनएन ने जब ये कवर की स्टोरी, तो उन्होंने जो इंडिया का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसका डाटा जो है वो फिर से शेयर किया है रेप्स इन इंडिया के ऊपर. तो उन्होंने कहा जी कि 32,000 केसेस अलेजली रेप अगेंस्ट वुमेन के जो हैं वो 2019 में जो है वो किए गए थे, और इसी तरह सिमिलर केसेस जो हैं वो कहते हैं. वैसे तो इंडिया का ये जो है क्राइम ब्यूरो जो है वो कहता है कि जी केसेस थोड़े से नीचे आए 2020 में, लेकिन जो राइट्स जो ग्रुप्स हैं जिनके साथ सीएनएन ने बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, इतने बड़े मुल्क में, बिलियन लोगों का से ऊपर का मुल्क है, उसमें 32 रेप केसेस कैसे हैं? तो वो कहते हैं जी अभी भी रेप जो है टैबू है. ये 32,000 केसेस वो हैं जो रिपोर्टेड होते हैं, जो रिपोर्टेड नहीं होते हैं वो तो इससे बहुत ज्यादा है, तो नंबर बहुत ज्यादा है. तो ये जो है, तो ये फिर से जो है राइट्स ग्रुप का कहना है कि भाई इंडिया को कुछ करना पड़ेगा आपके ये रेप्स जो है वुमेन के अगेंस्ट इतने सारे जो है वो क्यों हैं. आज एक बहुत ही जनाब इंटरेस्टिंग स्टोरी है द वायर की, एंड दिस इज रिटन बाय कांचा इलिया शेपर्ड. दिस इज द वायर स्टोरी, और इसका जो हेडलाइन है स्टोरी की वो है व्हाई बाइडन ब्रॉट अप गांधी इन हिज मीटिंग विद मोदी. अच्छा ये जो है स्टोरी ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि वो कहते हैं जी कि जिस वक्त ट्रंप साहब के साथ बड़ी दोस्तियां थी, बड़ी जफियां शफियां डालते थे मोदी जी, तो वो कहते हैं जी मोदी जी तो कभी गांधी शांधी का ना तो नाम लेते थे, ना वो उनके ऊपर कोई बिलीव ज्यादा शायद उनका था, बल्कि वो कहते हैं कि जिस वक्त जो है ट्रंप साहब जो है जिस वक्त वहां पर पहुंचे अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के अंदर इन फरवरी 2020, वहां पे वो जमाना था जब दिल्ली के अंदर राइट्स चल रहे थे. राइट्स चलते हुए ट्रंप साहब ने जो उधर स्पीच की, उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी जी का बड़ा कायल हूं क्योंकि ये रिलीजियस टॉलरेंस में बड़ा बिलीव करते हैं. तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि राइट्स चल रहे हैं राइट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, या और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी ये बड़ा रिलीजियस टॉलरेंस पे बिलीव करते हैं. अब ये जो आर्टिकल है इनका शेपर्ड साहब का, ये कहते हैं जी कि बाइडन गवर्नमेंट जो है उसकी जो मीटिंग मोदी जी के साथ हुई, या जो कमला हैरिस की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी मीटिंग हुई, तो उन्होंने क्लियर इनको करने की कोशिश की गांधी का जो नाम लिया वो इसलिए लिया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुल्क में गांधी और गांधीइज्म जो है वो खत्म होता जा रहा है, जो उसने सेक्युलरिज्म और टॉलरेंस और नॉन वायलेंस की बात की थी, टुडेज इंडिया इज नॉट दैट. तो वो कहते हैं जी इंडिया में ये जो एक्सपर्ट्स हैं शेपर्ड साहब के मुताबिक के जनाब राइट देयर, मोदी सिटिंग राइट देयर विद बाइडन साहब, और उनका ये डिसप्लेजर शो करना कि हिंदुस्तान के अंदर आज ना तो डेमोक्रेसी है, ना टॉलरेंस है, ना तो जो है नॉन वायलेंस पे वो बिलीव करते हैं, बल्कि हिंदुत्व पॉलिसी पे बिलीव करते हैं. इट्स वेरी शेमफुल फॉर अ नेशन. कहते हैं और भी ये जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, इन्होंने बड़े प्यार से, यानी वजह से हमारी पंजाबी में कहते हैं ना सेड़ सेड़ के जुतियां मारनियां, उस सेड़ सेड़ के उन्होंने जो है ना बड़े प्यार से उन्होंने बातें की हैं. और उनकी जो स्पीच का एक हिस्सा है वो हम आपके साथ जरा करते हैं. उसने कहा जी एज डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड आर अंडर थ्रेट, इट इज इंपेरेटिव दैट वी डिफेंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन आवर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसीज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल. तो वो कहते हैं जी कमला हैरिस ने उनको ये बताने की कोशिश की है कि आपके मुल्क में जो डेमोक्रेसी है इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर पीपल. तो वो कहते हैं जी क्या इनको समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी और वाइस प्रेसिडेंट ने भी दे हैव शोन डिसप्लेजर. तो क्या इंडियन डेलीगेशन को या मोदी जी को ये बातें समझ में
आई? कहा है कि बहुत कामयाब रहा दौरान का.
हाँ 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 जी, तो उन्होंने तो यही कहना ना, स्टेट लेवल पे तो यही कहते हैं ना महेश भाई. वो तो आपको पता ही है, वो तो अंदर से की खबरें तो फिर हमें मिली. वो जिस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब जब बिल क्लिंटन साहब से मिलने के लिए गए थे वो कारगिल के बाद, तो दोनों हंस हंस के बाहर तस्वीरें ऐसे खींच रहे थे. तो अंदर की तो स्टोरी ये थी कि क्लिंटन साहब ने बड़ी जो है सुनाई, बड़ी खिंचाई की और बड़ी सुनाई नवाज शरीफ साहब को. तो वो तो अंदर खाते जो बात चलती है वो और होती है ना, सामने तो उन्होंने जो फोटो अपॉर्चुनिटीज देखनी होती है ना, वो मुस्कुराते हैं करते हैं. तो वो कहते हैं जी इनको बातें ये समझ आई हैं जो उसने गांधी का जिक्र किया है और ये सारा कुछ जो है इनको समझ में आई है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर नॉट प्लीज्ड विद द ह्यूमन राइट्स जो है रिकॉर्ड ऑफ योर कंट्री. तो ये इनको समझने की जरूरत है, वो बिटवीन द लाइंस को भी पढ़ने की जरूरत होती है ना. तो वो कहते हैं कि इन्होंने पढ़ा है कि नहीं. अच्छा जी, पाकिस्तान जो है जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि सेनेट के अंदर बिल आया है और बड़ा पाकिस्तान में उसको खींचने की कोशिश की है. तो आज पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने कहा है कि जी हमने जो भी कोई जो सपोर्ट या मिलिट्री सपोर्ट या दूसरी सपोर्ट तालिबान को दी है वो यूएसए की रिक्वेस्ट पे दी है, और हमारा तो इतना बड़ा किरदार था, आप हमारे तरले कर रहे थे, यूएस हमारे तरले कर रहा था कि इनको निगोशिएटिंग टेबल पे लाओ, तो हम इनको निगोशिएटिंग टेबल पे लेकर आए यूएसए के लिए और हम यूएसए के लिए इनसे बात कर रहे थे, तो हमको जो है ये कैसे कर सकते हैं. आज फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है आसिम इफ्तिखार अहमद, उन्होंने भी आज बड़े गुस्से का इजहार किया है. उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो बिल आया है यूएस सेनेट के अंदर इट इज एब्सोल्यूटली अनवॉरेंटेड, और ये जो रेफरेंसेज हैं बिल्कुल गलत हैं, दे आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ये जो फ्रेंडशिप है इसके साथ. वो कहते हैं जी इट इज इनकंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान यूएस कोऑपरेशन ऑन अफगानिस्तान, क्योंकि जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन इन्होंने 2001 की थी तो यूएसए ने हमसे हेल्प मांगी थी, और अब भी जब इनको निगोशिएटिंग टेबल पे चाहिए था तो ये इसका और हमें कहा, हमने पहले दिन से अमरीका को कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी फॉर सस्टेनेबल पीस इन अफगानिस्तान. अब अमरीका ने कहा कि नहीं, हम लड़ाई करके इनको सबक सिखाएंगे. अब जबकि ये बिल लेकर आए हैं तो ये जो आपके खुद के वैल्यूज और आपके आइडियल्स थे उससे इनकंसिस्टेंट है, तो इसलिए आप पाकिस्तान के ऊपर जो है ये ना करें. हमने आपको हमेशा से कहा इनके साथ बैठो, डायलॉग करो, कोऑपरेशन जो है इनके साथ बढ़ाओ. आप नहीं माने, ये सारी चीजें जो आपने फिर की काउंटर प्रोडक्टिव हुई और अब उसका मलबा जो है आप हमारे ऊपर डाल रहे हो, विच इज नॉट रियली वेरी राइट. पीएमएलएन के जो प्रेसिडेंट हैं जी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कल हमने आपको बताया था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की है उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने और शहबाज गिल साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये जो सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं यूके के अंदर जो आई हैं जिसके अंदर इनको और इनके बेटे को शहबाज शरीफ साहब को जो है के बारे में आई थी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट के कोर्ट से कि भई हम इसको जो है यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो प्रोब कर रही थी दो सस्पिशियस बैंक ट्रांजैक्शंस को, तो ये झूठ निकली है. तो आज इन्होंने यानी उन्होंने कल कहा था कि ये इनसे रिलेटेड भी नहीं है, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने फिर से उस बात को दोहराया. उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये बात नहीं है कि हमसे रिलेटेड नहीं है, नैब ने तो उनको किया था कांटेक्ट, नैब ने तो उनको कांटेक्ट किया, नेशनल जो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी है, और उन्होंने कहा जी हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं अगर आप इनके से जो है वो इल्लीगल सारे वो बिजनेसेस और चीजें और मनी जो है उसको प्रोब करना चाहते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं. तो वो शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि इनको फिर अपनी मुंह की खानी पड़ी, इसलिए कि उन्होंने कुछ भी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है अगर नैब कर रहा है तो हमको नैब के ऊपर कारोबार नहीं है और हम आपके साथ मिलकर जो है ये प्रोब नहीं चलाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ा हिट किया गवर्नमेंट के ऊपर कि ये सारा इन्होंने जो है ये झूठ बोला है, पैक ऑफ लाइज था जो कल इन्होंने कहा है। एंड जनाब वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज। आज कंगना रनावत साहबा जो है मुंबई एयरपोर्ट पे देखी गई और बगैर, हाँ जी हमारी जो है ना बजी इज बैक, वहां पे देखी गई और उस जगह पे देखी गई जहां पे कि मुंबई एयरपोर्ट पे एक बड़ा सारा, बहुत बड़ा सारा एक पोस्टर लगा है जो कह रहा है नो मास्क नो एंट्री ऑन मुंबई एयरपोर्ट। कहती है राइट इन फ्रंट ऑफ दैट वो गुजर के ऐसे विक्ट्री का साइन बनाते हुए जा रही थी, तो उसकी वजह से काफी मीम्स आ जा गई और काफी इनको आज सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो हैं ये किस तरह से इनको जो है ये जो चूंकि ये स्टार है तो ये सेलिब्रिटीज के लिए ये नहीं है नो मास्क नो एंट्री की जो पॉलिसी है मुंबई एयरपोर्ट की, और फिर ये नॉर्मल लोगों के लिए है, और फिर ये कैसे, और एक ने तो कहा कि इन्होंने तो मास्क को ऐसे इग्नोर किया है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को इलेक्शंस के बाद इग्नोर करती हैं। तो इस तरह के काफी सारे जो हैं वो थे। अच्छा जी कुर्सी का चक्कर है, ठीक है जी कुर्सी का चक्कर है, आपको पता ही है तो कपिल शर्मा शो में जो एक मेन गेस्ट जज होते थे वो जो होते थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब होते थे, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में गए तो फिर उन्होंने छोड़ दिया और उनकी जगह पे आ गई अर्चना पूरन सिंह। अब जबकि सिद्धू साहब ने फिर से पॉलिटिक्स छोड़ दी है और रिजाइन कर दिया है कांग्रेस प्रधान के उससे रोल से, तो लोग पूछ रहे थे आज सोशल मीडिया पे कि क्या सिद्धू साहब वापस आएंगे, तो काफी सारे मीम्स भी बने हुए थे। तो अर्चना पूरन सिंह ने उनको कहा है जी कि बिल्कुल अगर मुझे जैसे रिप्लेस किया गया था 2019 में, तो अब अगर सिद्धू साहब वापस आ रहे हैं तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। तो उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा जी सारा चक्कर कुर्सी का है, तो बहरहाल वो कहती हैं जी मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है, मुझे दो दिन इसके लिए शूट करना पड़ता था कपिल शर्मा शो के लिए, और उसके लिए मेरे बहुत सारी मुझे अपॉर्चुनिटीज आती थी बाहर जाके शूट्स की जो मैं नहीं कर सकती थी, तो अगर सिद्धू जी आ जाएंगे तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि लोगों ने आज इनको क्रिटिसाइज किया ना, उन्होंने कहा ओ वेरी गुड सिद्धू साहब वापस आ रहे हैं, हमारा फेवरेट बंदा था, ये था वो था, तुम तो इतनी नहीं होती। तो उसने कहा जी मेरे लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जाऊं, तो मैं जो है यहां से मेरे पास जो है और बहुत सारा
अपॉर्चुनिटीज है,
बहुत अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास। हाँ जी अच्छा जनाब डैनियल क्रेग साहब, डैनियल क्रेग जो है ब्रिटिश एक्टर आपको पता है हॉलीवुड की नजर आते हैं उसमें जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में, आज फाइनली ही वॉक द रेड कार्पेट फॉर हिज फिफ्थ एंड लास्ट मूवी नो टाइम टू डाई, और ये 25th फिल्म है इस सीरीज में जो कि पिछले 50 साल से बनाई जा रही है, और अब जो है ये यूके के अंदर तो कल से ये इसकी स्क्रीनिंग शुरू हो रही है थिएटर्स में, और यूएसए के अंदर अक्टूबर 8 से शुरू होएगी। तो इन्होंने जो है वो कहा है कि मैं ग्रेटली रिलीव्ड फील कर रहा हूं, स्काई न्यूज को एक ये इंटरव्यू दे रहे थे और आप देख सकते हैं बड़ा इन्होंने खूबसूरत वेलवेट का एक पिंक सा जो है वो टक्सीडो पहनी हुई थी और काफी हैंडसम लग रहे थे, तो वहां पे जो है बहरहाल अब कोई और आएगा हम देख सकेंगे आने वाले दिनों में कि डैनियल क्रेग की जगह कोई और जेम्स बॉन्ड आ सकता है। पीसीपी ने अनाउंस किया है जी कि उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वसीम खान साहब उन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि न्यूज ये आ रही थी कि उनके भी कुछ डिफरेंसेस जो है रमीज राजा साहब के साथ आगे थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं अब कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। हालांकि इनको 2019 में एहसान मानी साहब ने किया था हायर और इनका जो 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था वो 2022 में होना था एक्सपायर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब और ज्यादा कंटिन्यू नहीं रखूंगा। एंड जनाब एक्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियन जो है पाकिस्तान की तानिया मलिक, पीसीबी ने उनको जो है अपॉइंट किया है टू हेड विमेन्स क्रिकेट नाउ। उसकी वजह यह है कि आज तक ये पोजीशन वाज हेल्म बाय उरूज मुमताज, लेकिन उरूज मुमताज ने कहा कि मैं जो है अब कंटिन्यू नहीं करूंगी। तो ये बड़ी पढ़ी लिखी खातून है ये तानिया मलिक साहिबा, ये लम्स की पढ़ी हुई हैं और इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है सियोल एशियन गेम्स में 1986 और नेशनल चैंपियन रही हैं 87 से 88 में, और काफी अभी भी इनके पास पोर्टफोलियोज हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की, पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन की और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, विमेन एजुकेशन एंड विमेन्स कमीशन की। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, वो कहते हैं ना पंजाबी में गोंगलुआ तो मट्टी चाड़ना, वही आज हुआ जी फिर है शर्मिंदगी बचाने के लिए ईसीबी के जो चेयरमैन है वही जो इंग्लैंड एंड जो वेल्स क्रिकेट क्लब जो बोर्ड है उसके चेयरमैन इन वटमोर जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम ये जो हमने डिसीजन लिया था पाकिस्तान से आने का, जरा आप इनकी बातें सुने, जरा बातें सुने और आप देखें ये गोरा जिसने सारी दुनिया पे हुकूमत की है माजिद भाई,
हाँ जी, हाँ जी,
और कैसे किया यार तुमने हुकूमत, हाँ ऐसे खेल खेल में है। जरा इनके जरा बयान सुने आप कहते हैं जी कि हमने प्लेयर से नहीं पूछा, हमने अपना बोर्ड का डिसीजन ले लिया, क्योंकि हमें लगा कि हमने प्लेयर से पूछा नहीं लेकिन हमें लगा कि हमारे प्लेयर्स और स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस आ जाएगा अगर वो पाकिस्तान में खेलेंगे। हाँ तो प्लेयर से हमने पूछने की तकलीफ नहीं की, ये डिसीजन हमारा था, लेकिन अब हम अगले साल एक पूरा प्रॉपर एक जो है वो टूर जो है पाकिस्तान का वो अब हम स्केड्यूल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे स्टेटमेंट सुने, कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर का। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि न्यूजीलैंड ने एन वक्त पे टूर कैंसिल कर दिया। भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है न्यूजीलैंड के साथ? अच्छा जी, नहीं, चूंकि उन्होंने कर दिया तो हमने भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी हमें यह थोड़ी पता था कि बाइडन साहब जो है अचानक से अपनी फोर्सेस निकाल लेंगे अफगानिस्तान से और वहां पे केओस आ जाएगा। और भाई साहब, मैच तो आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो अफगानिस्तान में केओस आ रहा है तो उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? आपके तो लंदन ब्रिज पे केओस आया हुआ था जब टीमें वहां पे गेम खेल रही थी, हैं जी। तो अब वो ये कहते हैं, तो अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए हम बड़ा अच्छा प्रॉपर टूर बना रहे हैं। तो भाईजान फिर उधर धमाके अगर फटने शुरू हो गए
फिर भागेंगे हम
अफगानिस्तान में, तो फिर आपकी प्लानिंग पे तो पानी फिर गया,
फिर हम भाग
फिर भागेंगे
हाँ, भाग जाएंगे
भाग जाएंगे। ले भाई, मैंने तो आज मैं मतलब
लास्ट सेकंड तक आप कोई डील्स वगैरह साइन ना करें क्योंकि हाँ, हो सकता है लास्ट सेकंड हम चले जाएं।
हम चले जाएं, कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस है, पाकिस्तान में लोगों को बड़ा अफसोस है, मुझे भी उसका बड़ा अफसोस है। हमने प्लेयर से नहीं पूछा लेकिन हमें लगा कि उनकी मेंटल उनको स्ट्रेस आ जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम चूंकि गई तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। यानी बातें सुने, न्यूजीलैंड की टीम गई तो हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं थी।
अब आपको जवाब मिल गया कि इसी तरह उन्होंने दुनिया को पे रूल किया।
ले भाई ये क्या तरीके है मतलब यानी आपकी अपनी खुद की तो कोई सोच समझ है नहीं है
ना, ना,
ना, वो कहते हैं ना जैसे सियाने कहते हैं कि दूसरे का मुंह लाल देख के चपेड़े मार मार के अपना मुंह नहीं लाल करना चाहिए। तो भाई साहब आपने तो ये मिसाल बिल्कुल सही साबित कर दी।
ये तो गोरे बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं,
लाल हो जाते हैं गोरे। हाँ, वो निकले तो आपने कहा वो मैं भी निकलना है, यानी किसी कोई और कुएं में छलांग मारेगा तो तुम कहोगे मैंने भी छलांग मारनी है, इसने मारी है तो मैं।
ये थी आज की न्यूज एंड साहब बकिया की न्यूज। अब इंशाल्लाह ताला कल फिर 5:45 आपके नहीं 5:45 आए थे आज यहाँ 5:45 जी 5:45 कल आ जाएंगे एग्जैक्ट 5:45 आपके साथ होंगे हम। अभी आपने भागना नहीं है, घबराना नहीं है कहीं पर तो आपके पास शाहजे जी आमिर आएंगे एक रंगारंग प्रोग्राम लेके कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम के फौरी बाद आपके प्रोग्राम में वापस आएंगे। थैंक यू सो मच
शाहजे
जी, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट यू गो अवे, विल बी राइट बैक।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बुशरा अंसारी। जैसे कि आप जानते हैं इंडस हॉस्पिटल गरीबों का मुफ्त इलाज करता है और खास तौर पे कैंसर पेशेंट्स बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत काम करता है। सो आपकी मदद के बगैर ये हो नहीं सकता, इसीलिए मैं आपके पास चल के आ रही हूँ और कोशिश करूंगी आपको एंटरटेन भी करूँ और आपसे इंडस हॉस्पिटल के लिए हेल्प भी लूँ। तो आपसे मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह कैनेडा में, जरूर आइएगा, आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।
Join us on Friday, October 1st at Apollo Convention Center in Mississauga. For tickets and more information, call 289-309-3895, 289-309-3895.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
इस आलमी वबा के दौरान हमारे बच्चों ने साबित किया कि वो कितने मजबूत, साबिर और साबित कदम हैं। लेकिन अब उनके लिए दोबारा यादें बनाने का वक्त है, खानदान और दोस्तों के साथ, टीम अराकीन के साथ, साथियों के साथ। कोविड-19 वैक्सीनेशन से बच्चों को मदद मिल सकती है दोबारा बच्चे बनने में। अपने बच्चों और उनके आसपास के लोगों के तहफ्फुज में मदद करें, दस्तियाबी पर अपने बच्चों की वैक्सीनेशन बुक कराएं। हुकूमत कनाडा की तरफ से एक पैगाम।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहेंगे?
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेन ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
कोविड 19 करके सारा काम ऑनलाइन हो गया, ग्रोसरी ऑनलाइन हो गई, ट्यूशन ऑनलाइन हो गई, और ता होर कल मेनू रिया ने दसिया कि सोडी फर्नीचर वाले भी हुन ऑनलाइन फर्नीचर सेल कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक सुनिया, ते हुन इना दा स्टोर भी खुल गया है।
ब्रम्पटन दे सब तो वड़े फर्नीचर स्टोर्स विचो एक सोडी फर्नीचर ते हुन कोविड 19 दे दौरान इना दी वेबसाइट sodifurniture.com ते जाओ अते अपनी पसंदा फर्नीचर सिलेक्ट करो। स्टोर विच आके सेम फर्नीचर देखो अते सेम प्राइस ते लो। इना दी कैनेडी लोकेशन हुन खुल चुकी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 9058747171।
मेसमराइज ऑप्टिकल, सनग्लासेस, आई ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज।
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerize Optical.
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके। आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं। बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा। $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से प्रोड्यूसर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर पर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ ऑयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव रिटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
आज नहीं तो कल शादी करना है ना, आई की मर्जी से ही सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ की बुनियाद पर टिका रिश्ता कब तक चलेगा? कौन है हमें?
नाउ स्ट्रीमिंग ऑन Zee5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
बस तुहाडे वर्गी सीधी सादी कुड़ी चाहिए थी।
सारी सीधी सादी गल का हासा निकल गया सीगा।
ए भाई साहब कौन?
मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है।
एडे पासे जा मैं।
हां सर गाल जी।
नाउ स्ट्रीमिंग ऑन Zee5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
योर मोस्ट अवेटेड मूवी पुवाड़ा नाउ स्ट्रीमिंग ऑन Zee5 ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।
वेलकम टू दिल से रे विद आमिर एंड शाजिया। जनाब आप कैसे हैं? हमारा टाइम बहुत छोटा 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 होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमें जितना भी टाइम मिलता है हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, आमिर साहब ने कल जो है मेरी काफ़ी क्लास ली मेरी एब्सेंस के अंदर, और जी ये महंगी क्रीमें और ये और अच्छा खा लें और फलाना है। देखें जी, मैंने आपको महंगी क्रीमों के बारे में बताया, मैंने आपको घर के भी सस्ते टिकाऊ जो है नुस्खे भी बताए हैं, लेकिन आमिर साहब उस वक्त जो है शायद कान लपेट के बैठे हुए थे बिल्कुल। मुझे लगता है उन्होंने बहुत मोटी सी जो है ऊनी टोपी पहनी हुई थी, जो इनको आवाज बिल्कुल नहीं आई कि मैंने क्या दिया। अच्छा जी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कोई मेरी जो एक दो बहनें थी उन्होंने मुझे एक दो दफा कहा कि जी हमारे फेस पे बहुत एक्नी हो गई है और हम जो क्रीम्स लगा रहे हैं उसके बड़े हार्श इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि फिर वो अच्छी ग्लोइंग स्किन भी नहीं रहती। तो मैंने आपको घर के नुस्खे बताए थे कि जैसे आप जब लेमन कभी अपने सैलड पे स्क्वीज कर रही होती हैं तो वही लेमन आप फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे। एक तो आपका कलर भी उसमें से जो है थोड़ा सा लाइट होता चला जाएगा, और जो है वो आपके जो फेस और आपके बाजू जो हैं वो भी थोड़े से ग्लो करेंगे। और इसके अलावा जिस वक्त आप खीरे खाते हैं, फॉर एग्जांपल जिस वक्त आप खीरा काट रहे होते हैं, तो उसका भी आपको पता है कि जैसे जूस सा निकल आता है, वो भी आप जो हैं हाथों पे मुंह पे लगा सकते हैं। काफी खास तौर पे फेस पे लगाएं, काफी वो रिफ्रेशिंग होता है। और इसके अलावा जिस वक्त आपने वो जो खीरों के जो साइड से ऐसे बड़े बड़े वो जो आप काटते हैं ना, तो अगर वो थोड़े बड़े हैं तो वो आप अपनी आईज पे भी ऐसे आईज आई पैक लगा के भी वो कर सकते हैं। तो जनाब ये थे घरेलू सस्ते टकाऊ किस्म के जो हैं जो टोटके, लेकिन आमिर साहब ने ये नहीं सुने, वो क्रीमें महंगी बताई उन्होंने और ये और वो। तो भाई वो क्रीमें भी इंपॉर्टेंट है ना, अब हर बंदा जो है वो ये नहीं करेगा ना, लेमन और ये खीरे नहीं करेगा ना, उसको कुछ जाना है अच्छी शॉप पे, उसको लेनी है ये क्रीमें, ये नेमतें अल्लाह के जो बंदों ने अपने बंदों के लिए बनाई है, तो उन नेमतों का भी आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा खाना जरूर अच्छा खाएं और थोड़ा सा वॉक करें, जो मैं नहीं करती, लेकिन आप लोग प्लीज जरूर थोड़ा वॉक किया करें, यानी हल्की लाइट एक्सरसाइज जो है वो हर किसी को करनी चाहिए। अच्छा जी, टाइम है हमारे पास कम और वक्त जो है वो भी आगे जाता जाता जा रहा है और मुकाबला है सैख। तो अब हम आपको इंट्रोड्यूस करा लेते हैं मिस्टर आमिर अहमद से, क्योंकि आज तो इनका फेवरेट दिन है, वेडनेसडे। तो आज आमिर साहब की जरा खुशी का आप जरा इसके चेहरे पे जरा आलम देखें जरा, कि वाह जी वाह क्या आलम है, आलम चना है बल्कि, देखें जरा।
अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसी खैरियत से हैं?
हाँ जी हाँ जी, खैरियत से। कल तो तुमने बड़े बड़े लेते लिए हैं, ये जो है ये कह रही है।
उस पर भी अभी बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा अपना सामईन और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम, आपके होस्ट आमिर अहमद और शाजिया मलिक आपके साथ हैं। और देखें कन्नी आज भी कतरा रही है बिला वजह, अभी भी एंड में इन्होंने क्या कह दिया कि सारे मसाइल हल नहीं होने, वो क्रीम लगानी ही लगानी है,
नहीं
या पार्लर जाना ही जाना है,
कोई
जो है ना वो घर वाले के भाई घर में कौन इतना काम करेगा, ये खीरे ये टमाटर अदरक प्याज लहसुन जो भी है मिला के उसको भूम करेंगी वो कौन करेगा। और मैंने कितना आसान बताया था, देखें आखिर में उन्होंने कहा कि वॉक करें, लेकिन उस पर उन्होंने डिस्क्लेमर चला दिया, मैं तो नहीं करती। तो भाई जब नहीं करती तो फायदा क्या होगा, जाओ पैसे खर्च करो इतने वड्डे वड्डे पार्लरों में जाओ और क्या होते हैं वो स्पा और सारी चीजें जो
नहीं, मोटापा तो नहीं कम होएगा
ना, नहीं होता तो
अनलेस एंड अंटिल आप लाइपोसक्शन कराएं,
तो अगेन पैसे खर्च करके आप
खर्च करके हाँ पितले तो हो सकते हैं,
पितले तो आप
हो सकते हैं, यस यस पितले पितंग
पितंग
हाँ, पितले पतंग
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 पतंग पितंग का होता पतंग
हाँ पतंग पतंग पितले पतले भी तो
अच्छा वो पतली होती है इसलिए पतंग पितंग
हाँ पतले पतंग और पितले पितंग।
नहीं नहीं आप तो बड़े वाले वो तुक्कल पन्ने वो बड़े बड़े जो लाहौरी उड़ाते हैं, मेरे दोस्त यार चिन्नियोटी वो ले आते थे लाहौर से फैसलाबाद से, उनको पकड़ दो हाथों से पकड़ के रखना पड़ रहा था डोर उसकी, वो इतने बड़े बड़े जो है, हम तो कराची वाले छोटी छोटी पतंगे पितंगे पितंगे उड़ाते थे, लेकिन अच्छा अच्छा वो पतंगे
इसलिए क्योंकि आपने पींगे नहीं बढ़ाई ना लोगों के साथ, इसलिए वो जुड़ी जुड़ी पितंगियां रखी हुई है, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपने ही छत में गिर रही हैं। तो वो जो लॉरियों का चूंकि दिल बड़ा होता है तो उनकी हर चीज बड़ी होती है, तो वो पतंगे भी बड़ी होती हैं, वो जब संभाली नहीं जाती हैं तो जिस जिस घर में गिरती हैं वहां से फिर दिल के मामलात जुड़ते हैं, बड़ा कुछ होता है जी।
बसंत को तो मैं मिस नहीं कर सकता, लाहौर बसंत मैंने गुजारी है और आई लव हाँ। लाहौर में अगर बसंत हो और आप लाहौर में ना हो तो कहते हैं बस आपकी जिंदगी बेकार है,
बेकार
आपने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं।
अच्छा तुम अगर चाइना जाओ ना ये बीजिंग वगैरह में, उससे भी बड़ी है वो, उन्होंने तो पूरे पूरे ऐसे ड्रैगन्स बनाए होते हैं ऐसे करके।
लेकिन वो मजा उसमें नहीं आएगा मुझे लगता है, जो हमारे जो काटा जो है ना, जो शोर शराबे जलेबियां बन रही है, समोसे बन रहे हैं, पकौड़े सब पे तले जा रहे हैं, और वो एक तरफ एक बंदा चरखी लेके और पेन्ना लेके खड़ा है, और एक उधर जो है
तो दुनिया के किसी
से आधे से ज्यादा रिश्ते लाहौर के तो बसंत में हो जाते हैं,
बसंत में हो जाते हैं। यस यस, इसीलिए तो कहते हैं वो कौन सा था, बसंत बाज सजना,
पतंग बाज सजना,
पतंग बाज सजना,
हरिया परवेज, क्या बात।
यस यस यस,
वो मेरे ख्याल से उन्होंने साइंस थी इसके पीछे,
साइंस है, साइंस साइंस है इसके।
लेकिन आपने क्या बसंत दिला के जो है ना इस वक्त समोसे और पकौड़े याद दिला दिए, तो इस वक्त तो मुझे भी
लॉर्ड याद आ गया,
लॉर्ड याद आ गया, क्योंकि मैंने एक दो बसंत जो है वो वहाँ पर अटेंड किए तफात से।
नहीं तो नहीं कहते ना, जिसने लॉर्ड नहीं तो किया जमिया ही नहीं,
इस पर कोई शक नहीं, आपकी बात से 100% एग्री। और जो लॉर है वो लॉर ही है,
लॉर लॉर ही है।
तो देखिए हमारे साथ जो है वो कॉलर है, वो कुछ कहना चाहते हैं, देखें क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
ला, ला, ला,
ओ जी लियाकत साहब, कैसे
लियाकत साहब, की हाल है? ठीक हो? लाड़ लाड़ी है सर, लाड़ लाड़ी है।
बसंत के साथ एक और काम होता है
जी,
गुड्डे पे जब लेटर बांध के जाता है ना दूसरे,
हाँ।
वो लेटर उतार के तो फिर दोबारा कन्नी देती है ना जो, हाँ।
तो होता है और कभी कभी वो वो लेटर जो है भाई साहब याबा जी के हाथ में भी चला जाता है। फिर होती है छतरौल।
आपने आपने तो पकड़ लिया,
पकड़ लिया हमने।
मगरिब के बाद ना लाइन हाजिरी होती है, फिर
यस फिर वो जाते हैं मोहल्ले में, निकलते कहते हैं वो यार देख, यार तेरे पुत्र ने मेनू मेरे धी नू यार यार की चक्कर है। वो कहते हैं चलो कोई नहीं चोरी साहब बैठो चाय शाह पियो ठंडे हो, फिर की हो गया। वो मजा ही आ रहा है, वो मजा ही आ रहा है।
अमर अमर भी अच्छे लग रहे हैं आज, तो बहुत लाइटें मार रहे हैं कि अब आता कुछ।
सर वो थोड़ा सा
वेडनेस डे का कमाल है,
वेडनेस डे जो है ना वो डिफरेंट लाइट जो है ना सर, वो माहौल ही अलग होता है
जी।
शादियां बीबी तो है ही शहजादी, पता चलता है कि किसी
थैंक यू
घराने की बहू
थैंक
खाते पीते सर यही खाती है वो बेचारे, जो घराने को अगर आप किसी दिन देख रहे ना वो बेचारे इतने मासूम बकरी हो गए, सब ये खा गई,
वो पीते हैं ये खाती है।
चलो किसी और को भी मौका देते हैं, ऑल द बेस्ट।
चलें सर, बहुत शुक्रिया लखन भाई आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल करने का। ये थे वाशिंगटन डीसी से,
अंकल सैम के कंट्री से,
अंकल सैम के कंट्री से। और बात जाहिर है पतंगों की हो रही है, सब कुछ हो रही है। अच्छा माहौल ही एक अलग होता है।
अच्छा अमित तुमने पतंगें उड़ाई हैं?
ओह
रियली?
आप समझ लेंगे कराची में भी,
हाँ।
जाहिर है वो एक लेकिन अब तो फेस्टिवल होने लग गया कराची में भी, लेकिन अक्सर जो है वो ये सीजन आता है रमजानों में।
अच्छा 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 अच्छा।
और मुझे अच्छी तरह याद है हम छतों पर होते थे और नीचे से जो है ना अल्लाह हमारी अम्मा को जन्नत नसीब करे, वो आवाज, इफ्तार का टाइम होने वाला है, 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, बस वो आखिरी लगे वह 4 पतंगे वहां टकरा रही है। और आपके ये हालत होती थी कि वो जो उंगलियां है ये सब जो है वो डोर जो है घुसकर उसमें घुसी हुई, सनी प्लास लगाया हुआ, उस पर टेप लगाई हुई, मास्क टेप लगाई है, या वो जो टेप इलेक्ट्रिक टेप आती थी ना वो बांध ली होती थी ज्यादा सी, क्योंकि वो इतने प्रेशर होता था। तो बड़े जो तुक्कल जो मेरे, क्योंकि मेरे ज्यादातर 2-4 महीने का सब चिन्योटी और ये फैसलाबादी लाहौरी थे सारे, तो वो मेरे लिए जो है ना जब भी जाते थे या मैं भी जाता था तो बड़े बड़ी जो है ना वो पिन्ने और वो तुक्कल जो हर तरह की शक्ल के जो है ना वो ले आते थे, उसको संभालना तो वो बड़ा मुश्किल, लेकिन वी एंजॉयड अ लॉट।
बिल्कुल, और हम उन्हें चूड़े लोगों में से हैं जो कि अपने घर के बाहर खड़े होके, अपने कजन्स के घर के बाहर खड़े होके लोगों को पतंगे चलाते देख रहे होते थे। खास तौर से जी इस्लामाबाद जाना उनके कजन्स के घर में और कजन्स ने कहना नो नो वी आर नॉट द बसंती टाइप।
ना करें यार,
कजन्स के
अच्छे नहीं किया अगर किसी ने बसंती
पतंग कजन्स से बेकार।
देखिए हमारे साथ कॉलर ने क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर, नाम बताइए।
अरे इसहाक साहब है, भूल गए हो?
अच्छा बहुत दिन के बाद है
इसहाक साहब।
अदनान साहब जी सर।
जी जी, और आप ठीक हैं, खरीयत हैं?
जी 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 जी, आप बताओ।
अमर भाई वो जो ना दरमियान में जो जो कुछ चीजें सेंसर कर जाते हैं,
हाँ
वो सारी बातें कर देते हैं पतंगों वाली,
लेकिन जो बीच में सजना की स्टोरी है वो ये सेंसर कर देते हैं।
बच्चे भी देखते हैं ना शो।
अमर بھائی آپ کے پاس جو بات کو کلیریفائی کرنے کا جو طریقہ رکھتا ہے وہ کمال ہے, ایٹ دا اسپاٹ آپ کلیریفائی کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کمال ہے. شادیا بھائی جیسے شادیا بہن تو وہ چلو وہ ہے نا جو ہوتا ہے اس کے اخبار والے, وہ تو ان کو تو ان کا تھک بنتا, وہ تو ان کو ہے ہی ہے
سر, وہ تو ماسٹر ہے, مطلب ان کا کام ہے, مطلب لکھائی پڑھائی کرنا ان کا کام ہے.
آپ کو ان سے سیکھا, آپ نے بھی
ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے سب کو سیکھا. بھائی جی میں تھوڑا تھوڑا میں نے تو اگر آپ نے اس پہ کچھ کیا ہے کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں ان سے تو یہ یقین کریں کریڈ, مطلب میں اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں.
اچھا
اچھا,
لیکن دیکھیں آپ کو عامر کا ٹیلنٹ تو مانگنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ سارا دن سوتا رہتا پھر بھی میرے سے سیکھ رہا ہے.
اور کل آپ کی
غیر موجودگی میں جو جو کچھ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی ہاں, مجھے سٹوریاں پتا چلی ہیں جو اس نے میرے خلاف باتیں کی ہیں, مجھے سب پتا چل گیا.
شروع کرتے ہی انہوں نے کہا جی یہ وہ کیا بتاتے رہتے ہیں, بینگے بینگے لٹے بتاتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کرے آپ وہ کرے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن کیا کہتے بولتے ہیں, ایک دن اس کا چور کا باقی بیووں کا ایسا ہوتا ہے نا, کیا ہو جائے گا ایک دن میں, کیا ہو جائے گا کیا کر لیں, کل تو آپ نے آ ہی جانا ہے.
بس سر اس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے,
آپ نے پورا پورا جواب دے دیا جی, بالکل آپ نے بالکل پورا. ہاں
حالانکہ اس کو اس چڑی کو پتا ہے, یہ جو عامر چڑی جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر ہاتھ بھی اپنا رکھ لیا نا سانس نکل جانی ہے اس کی. پھر بھی ہمتیں دیکھیں آپ ذرا اس کی نا, ہمتیں دیکھیں,
سب کچھ جانتے ہوئے سب کچھ پتا ہوتے ہوئے بھی آپ وہ بول جاتے ہیں,
پنگے لیتا ہے. ہاں پنگے
سر, معصوم آدمی سر ادنان بھائی, آپ کیوں مروائیں گے مجھے.
بہت
شکریہ کال کرنے کا.
تو وہ میں کہہ رہی تھی عامر کہ ہم ان بد نصیب فیملیوں
میں,
یعنی ہم جو ہیں سارے خاص طور پہ جی بسنت آ رہی ہے, بسنت آ رہی ہے, لاہور چلو لاہور چلو, لاہور گئے وہ لاہور میں جو کزن سے مرے, نو وی آر ناٹ دا بسنتی ٹائپس, تو ہم جی باہر کھڑے ہو کے محلے میں باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, لوگ جو ہے کٹا مارا ہے اس نے, وہ پڑا ہوئی اس نے, وہ چلی گئی یہ کر, ہم جی وہ کھڑے ہو کے محلے میں دیکھ رہے ہیں.
نہیں میں نے تو بہت انجوائے کیا بسنت کو, خاص کر لاہور میں.
یقین کرو وہ یہ نہیں تھا کہ یہ خالی اس جگہ اس محلے میں کچھ پڑھے لکھے تھے, باقی بھی سارے جو تھے.
پسند از ناٹ اباؤٹ پڑھے یا لکھے, اٹس فیسٹیول, اٹس
کلچرل فیسٹیول رائٹ,
کہ آپ
وہ سارے بھی وہ لڑکے لڑکیاں, کوئی لمز میں جا رہا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے, کوئی کہیں, لیکن یو نو جسٹ ٹو ہیو فن.
کیونکہ دیکھیں جیسے ہم تھے, ہمارا پورا گروپ تھا, ہم سب ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں کام کرنے والے کلائنٹس ہیں, برانڈز ہیں, لیکن سب جو ہیں وہ بسنت پہ جو ہے پتنگ اڑا رہے ہیں, اور کسی ایک دوست یار کی جو ہے گھر پہ جہاں
کی جو فیملی ہے
انہوں نے وہیں جو ہے قاعدہ جو ہے نا وہ کیٹرنگ کروا لیتے تھے ہمارے دوست, ہم سب مل کے کیا کرتے تھے کہ وہی پورا جو ہے نا تاہل لے کے اور وہ چولہا لے کے اور
یہی تو کرتے تھے,
ساری چیزیں جو ہے چھت پہ آئی
وہ کاٹی گئی ساری, اس کے بعد جی کھانا کھانے جا رہے ہیں ہم سارے, وہ چلو یار یہ ہمارے فرینڈز ہیں انہوں نے ہمیں.
تو یہ اگر کسی نے مس کر دیا تو پھر وہ جنت میں نہیں ملے گا یہ,
نہیں نہیں نہیں, اور وہ لوگ جن نے پسند نہیں کھیلی وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے,
یہ پتہ نہیں, لیکن بارہ لگا
نہیں جائیں گے بالکل,
مس کر دیا اگر بسنت کی ایسی بات ہوتی. آپ نے پتنگ کا ذکر کیا تو پتنگ پتنگ نکلتی چلی گئی.
یس 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 یس,
بہت بہت مطلب یہ بچپن کی یاد,
پتہ کیا بات ہے, اور اتنا وہ پراؤڈ ان کے لیے مومنٹ ہوتا تھا گھر کے اندر جمع کی ہوئی, اے دیکھو جی آج میں استیاں 10 کٹیاں, آج میں استیاں جی 2 کٹیاں, آج میں 5, وہ سارا جو ہوتا نا لوٹ اپنا لوٹ ادھر,
اور یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں بھی لاہور میں بھی جو پیدل فوج ہوتی تھی نا اس کو لوٹنے میں لگی ہوتی تھی, ایک پیدل فوج ہر محلے میں ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے نیکر پہنے چبلے پہنے ہوئے نا, وہ جو اگر جو ہم بڑے لوگ اڑا رہے ہیں تو وہ اگر کٹتی بھی ہے پتنگ ظاہر ہے چیک میری کٹی کسی, تو وہ جو ایک پیدل فوج ہوتی تھی ہم نے اس کا نام پیدل فوج رکھا ہوا ہے, وہ جو پیدل فوج بھاگے بھاگے نا گلیوں میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو ہے وہ پتنگیں رات تک جو ہے نا شام تک جب وہ جمع کری, انہوں نے درجنوں پتنگیں جو ہے. اچھا ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے, اب ظاہر ہے سیزن چل رہا ہے, کل بھی ویکینڈ ہے جیسے فرائیڈے نائٹ ہے سیٹرڈے, رات میں بھی پتنگ اتنے تیز ہوتی تھی وہ پیدل فوج کے, وہ نا اگر فرض کرو 15 روپے کی پتنگ ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ 8 یا اس میں جو ہے نا کٹی ہوئی آپ کی پتنگ, وہ سر وہ اتنے کی پتنگ دے دے میں لوٹ کے لایا, اب آپ نے جانا ہے دکان میں, واقعی تو ٹائم نہیں ہے, رات میں آپ جائیں لے کر آئیں ساری چیزیں ختم ہو گئی, کٹ گئی ساری,
کٹ گئی.
وہ محلے کے جو پیدل فوج ہوتی تھی نا
وہ, اور پھر لاہور میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ بسنت پہ نا لیٹر آن بہت سارے کانسرٹ شروع ہو گئے تھے وہاں پہ, تو یہ ایسے کوئی مطلب یوزلیس فیلوز تھے میری ماں کے فیملی والے. وہ جی چلو ادھر وہ جی وہ ایک وہ جو ہے نا آصف جا کی ایک حویلی ہے وہاں پہ نا وہ ہوتے تھے اب کانسرٹس. تو چلو جی کانسرٹ پہ چلے. میں نے کہا بھائی بسنت کے اوپر تم نے پینگیں کاٹنی ہیں پینگیں بڑھانی ہیں کہ تم نے جو ہے بھائی یہ جو ہے یہ جا کے کانسرٹ. کانسرٹ پھر بھی دنیا میں آدمی کبھی سن سکتا ہے نا بھائی, اور بھی بہت موقع آتے ہیں سال کے اندر. نہیں نہیں جی چلو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس اینڈ آل دیٹ. اتنے کوئی
ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں کہ کوئی ایون اگر آپ کسی کانسرٹ میں بھی گئے جو آپ لوگوں کی بات کریں, وہاں میوزک کانسرٹ ہے, وہاں گانا ہو رہا ہے, کوئی بھی آرٹسٹ آیا ہے اور وہ فون میں لگے یہ وہ جا کے باہر کھڑے ہوئے, بھائی کیا کرنے آئے ہو, کانسرٹ انجوائے کرنے آئے ہو.
مطلب چلو ٹھیک ہے, پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ فن کے موڈ میں ہوتے ہیں نا, غزل آپ کیسے سنتے ہیں, غزل آپ سنتے ہیں بہت ہی مطلب آپ اکیلے ہیں, بارش ہلکی سی ہو رہی ہے, اکیلے آپ بیٹھے ہیں, آپ غزل جو ہے اس کو. اب جب آپ فن کے موڈ میں ہیں, آپ پسند ٹیسٹ کرنے گئے ہیں, وہ جی کانسرٹ کس کا ہو رہا ہے, غزلوں کا کانسرٹ ہو رہا ہے. تو وہ میرا تو میرے جیسے بندے کا تو پھر کانسنٹریشن پتا کس پہ ہوتا تھا, میرے جیسے بندے کا باربیکیو جو بن رہا تھا, میرا تو کانسنٹریشن.
یہ کب کھلے گا؟
میں کہتی تھی دفاع ہو تم سارے بیٹھو, جو تم نے یہ غزلیں سننی ہیں سنو. میں تو جی وہ پھر اپنے وہ گئے ادھر باربیکیو کھایا, انجوائے کی تھی, لڑکوں سے پوچھا بھائی کتنے عرصے سے باربیکیو بنا رہے ہو, کتنے ایکسپرٹ ہو, کدھر کدھر جاتے ہو, کتنا کماتے ہو.
آپ نے بہانے دو تین چک بھی لیے, چیک تو کراؤ کچا تو
نہیں ہے. بس پھر ادھر کھڑے ہو کے جی وہ کیا پھر جو ہے, پھر اس کے بعد جی رات ہو جی دو بج گئے, چلو جی اب گھر جائیں. میں نے کہا بھائی کیا فائدہ ہے ایسے نا, ساری پسند جو ہے بیکار کرا دی ہے. تو میں نے تو پھر لیٹر آن وہ کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا نہیں نہیں تم لوگ جاؤ, میں جو ہے باہر کھڑے ہو کے دیکھ لوں گی جو ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں.
جی بہت زبردست. اور
لیکن کیا یادیں ہیں,
کیا یادیں. اوف یہ اچھا, اب مجھے نہیں معلوم کہ ظاہر ہے آئے ہوئے 6-7 سال ہو گئے, اب ایکٹیویٹیز جو ہے نا بہت آرٹیفیشل ہوتی جا رہی ہیں ہر چیز. اب وہ فن اور وہ دل سے چاہت اور وہ سب مل کے کر لینا, اب کیا ہوتا ہے وہ دیکھا ہے میں نے کہ جس کا دم ہے بھائی, اکیلے سے گھر میں بھی ہوتا ہے, خاندان میں بھی, مطلب دوست یاروں میں یا بہن بھائیوں میں. اب جس کی ہمت ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ خوشی میں, اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ کر لیا باقی. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا اٹس ناٹ اباؤٹ منی, اٹس اباؤٹ کہ آپ نے کتنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے. کہ یار ٹھیک ہے
پیسہ تو اب لوگوں کے پاس زیادہ ہے,
لیکن اب وہ فن کم ہو گیا.
وہ جو کلچرلی پیار تھا نا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے,
وہ ختم ہو گیا,
وہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا.
پیسہ تو آ گیا سب کے پاس, لیکن اب وہ پیار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے.
ہماری جو جنریشن ہے ابھی تک, یعنی کہ جیسے میرے کزنز ہیں یہ, ہم اب بھی اگر ملتے ہیں نا سارے اسی طرح لیٹ نائٹ مووی دیکھیں گے, کریں گے, ملیں. لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے بچوں میں نا یہ چیزیں نہیں ہیں.
میرے خیال سے وی آر لاسٹ جنریشن,
لاسٹ جنریشن
جنہوں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت دیکھا کہ یار کسی کی ریسپیکٹ یا اٹھنا بیٹھنا کیسا, پھر ایک منگل اپ ہونا اپنے فیملیز کے ساتھ, اپنے کزنز کے ساتھ.
ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی اپنی کزنز کی فوٹو, ساری مل کے اکٹھی جو ہیں مری گئی ہوئی ہیں, گھوم رہی ہیں, پھر رہی. سو آئی مین وی آر ایبسولیوٹلی دا لاسٹ جنریشن جو کہ یہ فیملیز کے ساتھ نا ایسے ایک دوسرے کے بیڈ میں سونا, رولی پولی ہونا, کرنا یہ سارے فن کرنے, جا جا کے کلفیاں کھانا,
ایک کمرے میں کزن کو 8-10 کزن بچے جو ہیں وہ سو رہے ہیں,
اور چھپ چھپ کے جانا اور کلفیاں کھانی, اور ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ یہ تم لوگوں نے بیمار ہو جانا ہے, یہ جو ہے مونسون کا ویدر ہے, یہ نہیں جی نہیں, چھپ چھپ کے جا رہے ہیں. اور ہم تو جی ایسے ہی واک پہ جا رہے ہیں, واک کرتے کرتے جی مارکیٹ جا رہے ہیں, وہاں پہ دہی بڑے کھا رہے ہیں, وہ پانی پوری کھا رہے ہیں. وہ یہ والا پیار, یہ فن جو ہے نا ہمارے بچوں میں نہیں ہے.
نہیں ہے, نہیں ہے. انہیں رات کے 10-11 بجے بولو نا یار چلو آ کے پان کھانے چلتے ہیں, یا چلو یار وہ ایسا کرتے ہیں حلیم لے آتے ہیں, نہاری اپنا لے آتے ہیں, یہ تو بے ہوش ہو جائیں گے.
ہاں بے ہوش ہو جائیں گے, بالکل بے ہوش ہو جائیں گے. اور یہ کون سا وقت ہے نہاری لے کے جانے کا, اور یہ کون سا, یہ نہاری کھانے کا کوئی وقت ہے؟
نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ
جنریشن جو ہے نا
یہ اس طریقے سے بلیس نہیں ہوں گے جیسے کہ جو ہم نے جو ٹائم گزارا بچپن میں چیز کو فیل کیا.
روز گالیاں ماں باپ کی کھانی, روز مری کی وجہ لال مٹی تھی اس کے اوپر سے اسکٹے مارنی, روز وہ لال کپڑے لے کر آنے, روز نوکروں سے گالیاں گانی کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھو یہ لال مٹی دھلی نہیں, دھلتی نہیں آپ مری میں, آپ کو پتا یہ پانی کتنا مشکل ہے.
صحیح بات ہے.
او مائی گاڈ کتنی
ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور جانے کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ گیا 7:05 پہ جو ہے وہاں نے مغرب یعنی ٹورنٹو اور اس کے گرد نوا میں جو ہے مغرب کا وقت آج 7:05 پر ہے. اور جناب آپ نے ہمارے eawaz.com ہمیشہ ہم اپنے کہتے ہیں کہ آپ وہاں ضرور وزٹ کیجیے, صرف وزٹ ہی نہیں کیجیے, جائے اور جا کے بند کر دی. نہیں نہیں جناب, آپ وہاں نیوز پڑھیں, آپ وہاں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, آپ ریڈیو سن سکتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے, آپ ویب سائٹ پہ ریڈیو سن سکتے ہیں اور ٹی وی دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹی وی بھی سن سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی خبریں ہوتی ہیں اس کو ضرور جو ہے وہ دیکھیں, اس کا فیڈ بیک ضرور دیں ہمیں کہ آپ
جوڑنے کی کوشش کریں,
ان کو جوڑتے رہیں, تھوڑا تھوڑا پزل سالو کریں, اور صبح آ کے پھر ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ پزل سالو کر لیا. اس کے علاوہ ہمارے ایڈورٹائزر جو ہیں ان کو ضرور سپورٹ کیجیے, جیسے کھانوں کی بات بات تو اس کے پہلی بات جو ہے نا وہ کھانے کی سامنے کھانے پینے کی بات جو ہے وہ آپ کریں تو ہمارے ریسٹورینٹ ہے ولیج ٹیسٹ فیصل چٹھا ان کو ضرور جو ہے وہ جائیے وہاں ٹرائی کیجیے ان کا بوفے بہت زبردست ہے 40 سے زیادہ جو ہے وہ آئٹمس ہیں اس کے علاوہ میرے جیسا کھانا اگر آپ کو کھانا ہے کیونکہ ہیلدی فوڈ یو نو زیادہ کریم پہ پیسے خرچ نہ کریں ہیلدی فوڈ کھانے جناب بچ جائیں گے اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ گرل اینڈ چیک جانا ہے جناب تمام گرل آئٹم جو ہے وہ آپ کو ملیں گے اور شہزادی جی کے لیے جو کھانا جائے تو آپ جا کے عمران بھائی کو بولیے 770 بریانی اور اچھی کڑھائی اور روغن نان اور پتہ نہیں کیا کچھ وغیرہ سب عمران بھائی آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے اس کے علاوہ جیسے کہ مجھ پہ لگا تھا کہ سننے کی کوئی اگر کمی رہ گئی آپ کو جیسے مجھے اکثر ہو جاتی ہے ان کی باتیں سنا ہی دیتے تو بھول جاتا ہے تو مجھے جو ہے وہ میں گیا تھا ہیئر میکس پہ شیراز بھائی کے پاس اگر آپ میں اور آپ کے کسی چاہنے والے اگر سنائی کم دے رہا ہے جناب تو آپ ہیئر میکس شیراز کے پاس ہی اس کے علاوہ 1 اکتوبر کو جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل جناب اس کو ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے